नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने पंजाब खोड़ क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सोल्जर थॉन मैराथन के दौरान कल मेट्रो सेवाएं सवेरे 3 बजे से शुरू होंगी। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज पंजाब खोड़ क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विकास कार्य दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड फंड के अंतर्गत तथा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहयोग से किए जा रहे हैं।
इन कार्यों में गांव जटखोड़ से पंजाब खोड़ तक, गांव माजरा से जटखोड़ तक और बाजितपुर से माजरा तक काली सड़क का निर्माण कार्य सहित अन्य विकास कार्य शामिल हैं। यह कार्य इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले लगभग 30 वर्षों से लंबित थे और अब वर्तमान सरकार इसे पूरा कर रही है। श्री सिंह ने कहा कि इन विकास कार्यों के माध्यम से केवल सड़क निर्माण ही नहीं बल्कि गांवों के समग्र और दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव रखी जा रही है। इसके साथ ही स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन योजनाओं के माध्यम से दिल्ली के गांवों को नई पहचान मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की एक सशक्त, टिकाऊ तथा प्रेरणादायक मिसाल स्थापित होगी। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के बीच शहरी परिवहन क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और क्षमता विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य शहरी गतिशीलता की चुनौतियों के समाधान के लिए शैक्षणिक विशेषज्ञता और व्यावहारिक अनुभव को एक साथ लाना है। इसके अंतर्गत दोनों संस्थान संयुक्त रूप से अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य करेंगे और परिवहन क्षेत्र के लिए व्यावहारिक समाधान विकसित किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप, तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। निगम के अनुसार ये सहयोग देश में सतत और कुशल शहरी परिवहन प्रणाली के विकास को गति देगा तथा भविष्य के लिए सक्षम कार्यबल तैयार करने में सहायक होगा। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को शशि गार्डन क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 45 किलोग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। इसकी कीमत लगभग 23 लाख रुपए है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी, एक इलेक्ट्रॉनिक वजन तौलने की मशीन और पैकेजिंग सामग्री भी बरामद हुई। दोनों आरोपी अंतर्राज्यीय नेटवर्क से गांजा लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सप्लाई करते थे। एक अन्य मामले में एक महिला को न्यू सीमापुरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 56 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान सप्लायर का नाम बताया है। इसके बाद पुलिस कथित सप्लायरों को तलाश कर उनके ठिकानों पर छापे मार रही है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में शामिल 2 आरोपी को गांधीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से 400 अवैध शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। दिल्ली के सिविल लाइंस क्षेत्र में यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
इस अभियान के अंतर्गत कमला नगर मार्केट क्षेत्र में 10 दिनों में लगभग 5200 चालान किए गए और 18 वाहन जब्त किए गए। राजपुर रोड पर 5500 से अधिक चालान काटे गए। बुलेवर्ड रोड पर लगभग 700 चालान और 19 ऑटो जब्त किए गए। कुल मिलाकर पिछले एक महीने में लगभग 200 वाहन जब्त किए गए हैं। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यातायात पुलिस ने 110 हेलमेट वितरित किए। सख्त प्रवर्तन और जागरूकता अभियानों के कारण पिछले वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 32% की कमी हुई है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने नागरिकों से घबराहट में पेट्रोल और डीजल खरीदने तथा रसोई गैस की अनावश्यक बुकिंग से बचने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। एक रिपोर्ट।
5 किलोग्राम के सिलेंडर नजदीकी एलपीजी वितरकों के यहाँ उपलब्ध हैं और वैध पहचान पत्र दिखाकर इन्हें खरीदा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि 5 किलोग्राम के सिलेंडर खरीदने के लिए किसी पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग में 95% की वृद्धि हुई है और कल लगभग 51 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। मंत्रालय ने लोगों को पीएनजी, बिजली से चलने वाले इंडक्शन और कुकटॉप जैसे वैकल्पिक साधनों के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया है। पिछले एक महीने में 3 लाख पीएनजी कनेक्शन जोड़े गए हैं और 3,80,000 से अधिक ग्राहकों ने नए पंजीकरण कराए हैं। दीपेंद्र और अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
भारतीय एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर भारत की ओर बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
सरकारी सूत्रों के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार करने वाला ग्रीन सानवी 7वां भारत उन्मुख एलपीजी टैंकर है। पश्चिमी फारस की खाड़ी क्षेत्र में कुल 17 भारतीय ध्वज वाले जहाज मौजूद हैं, जिनमें 400 से अधिक भारतीय नाविक सवार हैं। नौवहन महानिदेशालय भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहाज मालिकों और भारतीय दूतावासों के साथ लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। महानिदेशक जहाजरानी नियंत्रण कक्ष 24 घंटे और 7 दिन काम कर रहे हैं। अब तक खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न हवाई अड्डों और क्षेत्रीय स्थानों से 1,130 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी में सहायता की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं करिश्मा राय।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भुगतान संबंधी समस्याओं के कारण गुजरात के वडीनार से चीन की ओर ईरानी कच्चे तेल के कार्गो को मोड़े जाने की खबर को गलत और आधारहीन बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि पश्चिम एशिया में आपूर्ति में व्यवधान के बावजूद भारतीय तेल शोधन कारखानों ने अपनी कच्चे तेल की आवश्यकताएं पूरी कर ली हैं और ईरानी कच्चे तेल के आयात के लिए भुगतान संबंधी कोई बाधा नहीं है। उद्योग जगत ने कई महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों का सीमा शुल्क छूट देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। विक्टोरिया टूल्स के अध्यक्ष एसएस बंगा ने इसे एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। उन्होंने कहा कि इस कदम से उत्पाद लागत कम होगी, उपलब्धता में सुधार होगा और घरेलू तथा निर्यात बाजारों को समर्थन मिलेगा।
भारत सरकार ने जो कदम उठाया है वो एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है, जिससे स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के अंदर जितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं उसका 30% प्रोडक्शन वी कैन सेल इन द लोकल मार्केट, तो 20% ऑफ द वैल्यू एडिशन एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ वो जोन टोटल एक्सपोर्ट जोन है।
चिकित्सा उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद के कार्यकारी निदेशक प्रवीण कुमार मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि ये निर्णय मुद्रा स्फीति के दबाव को कम करेगा और पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण आपूर्ति में उत्पन्न बाधाओं को दूर करेगा।
हमारी जो कस्टम ड्यूटी की थी उनको हटाने से जो रॉ मटेरियल है वो कॉस्ट भी हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मैनेज कर पाएंगे और हमारी कॉस्ट को हम एड्रेस कर पाएंगे ताकि हमारे पैसे ना बढ़े और ओवरऑल हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो भी ना बढ़े आम आदमी के लिए।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को लेकर किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देश के कल्याण के लिए काम करने वाले संगठनों को परेशान नहीं किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 से कानून में बदलाव आएंगे और व्यापार में सुधार होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि मामूली तकनीकी अपराधों के लिए जेल की सजा के बजाय जुर्माना लगाया जाएगा, इससे न्यायिक प्रक्रिया तेज और अधिक तर्कसंगत बनेगी। संसद में भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संघ फिस्मे ने विधेयक के पारित होने का स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में फिस्मे के महासचिव अनिल भारद्वाज ने कहा कि विधेयक अनुपालन बोझ को कम करने और सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए अधिक अनुकूल माहौल तैयार करने में सहायक होगा।
जन विश्वास बिल के पास होने पर वेलकम करती है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रेगुलेटरी बर्डन को कम करेगा और उनका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको बढ़ाएगा। जो माइनर ऑफेंसेस भी होते थे उसमें क्रिमिनलाइजिंग जो एलिमेंट था जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को करना पड़ता था,
उसकी बजाय डीक्रिमिनलाइजिंग को खत्म करके और फिर पेनल्टीज लगाकर ऐसे बहुत सारे लंबित मुकदमों का समाप्ति होगी और मेरे ख्याल से एमएसएमई के लिए तो ये बहुत ही अच्छा कदम है।
मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने आज नई दिल्ली में सप्पर राम तपस्वी राजा नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री भल्ला ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और इसे समृद्ध बनाने में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो पीएनबी सोल्जरथॉन मैराथन के उपलक्ष्य में कल मेट्रो सेवाएं निर्धारित समय से पहले शुरू करेगी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस मैराथन के प्रतिभागियों की सुविधा के लिए येलो, ब्लू और वायलेट लाइन पर मेट्रो सेवाएं सवेरे 3 बजे से शुरू होंगी और सवेरे 6 बजे तक हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। इसके बाद इन तीनों लाइनों सहित अन्य सभी मेट्रो लाइनों पर सेवाएं रविवार के निर्धारित समय के अनुसार ही संचालित होंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने कल सोल्जरथॉन हाफ मैराथन के कारण सवेरे 5:30 बजे से दक्षिण दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्जन और प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार मेहरचंद मार्केट, कोटला रेड लाइट, जोरबाग क्रॉसिंग और लाला लाजपत राय कट समेत कई स्थानों पर गाड़ियों को डायवर्ट किया जाएगा। वहीं बीपी मार्ग और लोधी रोड पर सवेरे 5 बजे से 10 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। दिल्ली नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज गेट से रामकृष्ण आश्रम मार्ग और शीला सिनेमा तक सफाई अभियान चलाया। इस दौरान इन मार्गों से कचरा हटाया गया। इससे पहले दयाबस्ती रेलवे क्षेत्र में भी कल लगभग 300 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में पीएमएमएल के अभिलेखागार शीर्षक से एक दुर्लभ और ज्ञानवर्धक प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसमें लोगों को भारत के आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की झलक देखने को मिल रही है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंदिराज सिंह रविवार को रोहिणी सेक्टर 24 में सड़कों और नालियों के सुधार तथा विनिर्माण कार्यों के विभिन्न पॉकेट का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि सवेरे 9 बजे से शुरू होने वाले इन कार्यक्रमों में पॉकेट 6 से लेकर पॉकेट 22 तक के कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे। श्री सिंह ने कहा कि इन विकास कार्यों से क्षेत्र में बेहतर सड़कें, सुचारू जल निकासी और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित होगा, जिससे आम लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। दिल्ली में आईपीएल टी20 क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 6 विकेट पर 162 रन बनाए। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 51 रन की पारी खेली। 163 रन के लक्ष्य को दिल्ली कैपिटल्स ने 11 गेंद शीर्ष से हासिल कर लिया। समीर रिजवी को 90 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजधानी में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंदिराज सिंह ने पंजाब खोड़ क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सोल्जरथॉन मैराथन के लिए दौड़। कल मेट्रो सेवाएं सवेरे 3 बजे से शुरू होंगी और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।